السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو پیچھے تک آ رہی ہے آواز؟ نہیں آ رہی. جی اب آواز آ رہی ہے؟ کم آ رہی ہے. یہاں سے بولیں ذرا تیز کریں. جی اب صحیح ہے آپ لوگوں کو آواز؟ الحمد للہ جزاک اللہ خیر. آپ سب کو امید ہے کہ کارڈز مل گئے ہوں گے. الحمد للہ. میں آپ سب سے ذرا یہ درخواست کروں گی اپنے سیل فونز آف کر دیجیے. جو اللہ کے دین کی اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے وہاں پہ فرشتے موجود ہوتے ہیں, تو ایسی مجلس کا احترام ہی ہے کہ ایسی ساؤنڈس جو کہ کوئی میوزیکل ساؤنڈس ہیں یا اور کوئی بھی ایسی ساؤنڈ جو ڈسٹرب کرتی ہو اس کو آف کر دیا جائے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. پروگرام شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه, کہہ دیجئے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, تو وہ تمہیں آ پکڑنے والی ہے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, پھر تم پوشیدہ اور حاضر کے جاننے والے کے پاس لے جائے جاؤ گے, لوٹائے جاؤ گے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے ہو. جب اس لیکچر کی ایڈورٹیزمنٹ کی گئی تو بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ, اور فون بھی بہت سارے آئے, انہوں نے یہ کہا کہ کیا آپ نکاح کے اوپر, کوئی شادی کے اوپر کوئی درس دینے والی ہیں, کیونکہ آج کے درس کا موضوع تھا میری رخصتی ہے. تو مے بی آپ لوگوں میں سے کوئی یہی سوچ کے آیا ہوگا یہاں, لیکن ہمارے ذہن میں شادی کی رخصتی کا تو ہوتا ہے, اس رخصتی کا جو ہم نے اس دنیا کے گھر سے آخرت کے گھر میں قدم رکھنا ہے اس کا ہمارے ذہن میں بہت کم ہوتا ہے. شاید ہم اس کو رخصتی نہیں سمجھتے, حالانکہ انسان جب سے ہوش سنبھالتا ہے, جب سے دنیا میں آتا ہے بلکہ پیدا ہوتا ہے, تو یہ طے ہے کہ جو پیدا ہوا اس کو موت آئے گی. مگر جیسے جیسے انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے وہ اتنا مست ہو جاتا ہے, آپ کا بھی قصور نہیں, اتنی دنیا میں اٹریکشن ہے, اتنا ہنسی مذاق, کھیل تماشے, انٹرٹینمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ انسان اس قدر اس میں مگن ہوتا ہے کہ وہ بھول ہی جاتا ہے کہ اس کو کبھی واپس لوٹنا ہوگا. جس دن وہ پیدا ہوا اس سے پہلے اس کے بارے میں لکھ دیا گیا کہ اس نے کب واپس لوٹنا ہے, کون سے دن, کون سی تاریخ کو, کون سے لمحے میں اس کی واپسی ہے, یہ طے کر دیا جاتا ہے. پھر بھی دیکھیں انسان کیسا غافل ہے کہ ایک چیز جو طے ہے اس کے بارے میں نہیں سوچتا اور اس کو ذہن میں نہیں رکھتا. انسان دنیا میں آتا ہے, وقت جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے اس کی زندگی کم ہوتی جاتی ہے. آج کا جو دن گزر گیا وہ واپس کبھی نہیں آنا, یہ لمحات جو گزر گئے، جب آپ یہاں سے جائیں گے تو یہ والا وقت جس میں آپ نے یہاں پہ آ کے جس وقت آپ بیٹھے تھے، وہ گھنٹہ واپس نہیں آ سکتا، وہ منٹ واپس نہیں آ سکتا. تو جیسے جیسے ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے، ہماری منزل، ہمارا دوسرا گھر ہم سے قریب ہوتا جا رہا ہے. زندگی کم ہو رہی ہے یا زیادہ؟ کم ہو رہی ہے نا، تو اس کا مطلب ہمارے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے. مگر انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جوں جوں زندگی گزرتی جاتی ہے اور اس کی امنگیں جوان ہوتی جاتی ہیں، وہ اور زیادہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بس میں نے یہی رہنا ہے، خواہشات اور بڑھتی جاتی ہیں اور وقت کا پہیہ اس کو بوڑھا کرتا چلا جاتا ہے. انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ موت کتنے قریب آ گئی، تو وہ موت سے غافل یہی سمجھتا رہتا ہے کہ ابھی بڑا ٹائم ہے، بہت وقت پڑا ہوا، اور وہ اور 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 کی حوث میں زندگی گزارتا جاتا ہے. کئی عزیزوں کی، ہمارے آپ کے بھی کئی قریبی رشتہ داروں کی، دوستوں میں کسی نہ کسی کی وفات ہوئی ہوگی جو آپ کو یہ پیغام دے گئی کہ آپ نے بھی جانا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے نا، ہم ہر ایک کی موت کا یقین رکھتے ہیں لیکن اپنی موت کا ہمیں یقین نہیں ہے. ایک دن تو پھر وہ آ ہی جاتا ہے جس دن جانا ہوتا ہے، جو رخصتی کا دن ہے، اور وہ جو تاریکی کا گھر ہے، اندھیروں کا گھر ہے، کیڑوں کا گھر ہے، اس میں انسان کو لے جا کے دفنا دیا جاتا ہے، چھوڑ کے آیا جاتا ہے. گھر والے بہت روتے ہیں، بہت سوگ کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی جانے والے کو واپس نہیں لا سکتا، یہ حقیقت ہے. اب اس کو اگر ہم تھوڑا سا، جو آپ لوگوں کے ذہن میں آیا تھا نا یہ ٹاپک سن کے کہ میری رخصتی ہے، اس کے ساتھ اگر اس کو لنک کیا جائے تو واقعی بہت زیادہ مماثلت ہے. ایک لڑکی کی رخصتی میں جو ایک گھر سے دوسرے گھر میں ہوتی ہے، اور انسان کی دنیا سے رخصتی میں. اس چیز کو آج دیکھیں گے، کیونکہ ہم خواتین ہیں، جب سب کی دنیا میں رخصتیاں ہوئیں تو اس چیز کو بڑی اچھی طرح ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور بہت دفعہ ہم نے یہ باتیں سنی بھی ہوں گی جو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گی. اپنے گھروں میں آپ کو پتہ ہے نا، جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اس وقت سے مائیں تھوڑا تھوڑا کر کے جوڑنا شروع کر دیتی ہیں کہ بیٹی ہے نا تو آج سے جوڑوں گی، تو پھر اس کے لیے شادی کروں گی، تو اس دن مجھے فکر نہیں ہوگی. جو مائیں جوڑ جوڑ کے رکھتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، جب کوئی رشتہ اچھا آتا ہے تو کہتی ہیں کہ اب دیر کس بات کی، جس دن چاہیں تاریخ رکھ لیں، ہم تو وہ تیاری کر کے بیٹھے گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اسی طرح جو انسان دنیا میں عمل کرتا چلا جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا جوڑتا جاتا ہے نا، تو جس دن موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ پھر یہ نہیں کہے گا مجھے تھوڑا وقت چاہیے، وہ کہے گا میں تو پہلے ہی تیاری کر کے بیٹھا ہوں، جب چاہے لے چلو، جانا تو ہے، میری تیاری ہے، مجھے تاریخ کی ضرورت نہیں کہ 6 مہینے بعد آنا. میں کہتا ہوں آج ابھی بھی میں ریڈی ہوں، کیونکہ وہ ریڈی رہا ہمیشہ، اس نے آخری دن کا انتظار نہیں کیا. آپ دیکھیں کوئی بھی عقل مند ماں شادی کے دن کا تو انتظار نہیں کرتی نا، کہ جس دن وہ شادی کی تاریخ ہے اس دن میں تیاری شروع کروں گی. کیا آپ نے ایسے کوئی دیکھے؟ بلکہ میں کہتی ہوں ساری زندگی تیاری کر کے بھی جب قریب جتنا وقت آتا جاتا ہے اتنی تیاری اور بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ دن آ جاتے ہیں کہ جب جتنا قریب آتا ہے پھر تو نہ کھانے کا ہوش نہ سونے کا ہوش. دیکھا ہے نا لوگوں کو، وہ کیسے بازاروں میں سارا سارا دن گھوم رہے، ہر کام پیچھے کر دیتے ہیں، نیند بھی نہیں آتی، کہتے ہیں کھانا وانا بھی سب چھوڑو کیونکہ رخصتی کا دن قریب آ رہا ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ اس رخصتی جیسی ہی وہ رخصتی ہے جب دنیا سے جائیں گے تو، اور واقعی جو جو جوڑ جوڑ کے رکھے گا ابھی سے، تو موت کے فرشتے کے آنے پہ اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور دیکھیں کون آپ میں سے ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی رخصتی نہیں ہونی؟ ایک تو ہو چکی، کوئی ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کو رخصت نہیں ہونا؟ ہر ایک کو رخصت ہونا ہے، ہر ایک کو جانا ہے. اور اگلے گھر کے لیے ماں کیوں جوڑ جوڑ کے رکھتی ہے؟ میرے خیال میں ہم سب خواتین ہیں، سب کو پتہ ہے کہ مائیں اس لیے جوڑ جوڑ کے رکھتی ہیں کہ کچھ دے کے بھیجوں گی نا तो वहां पे सास नंदों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे ना। मेरी बेटी को कोई ये नहीं कहेगा कि ये लेकर क्यों नहीं आई, इज्जत से रुख्सत करूंगी, वहां पे इसके काम आएगा, तो मेरी बेटी को कोई परेशानी ना हो। इस वजह से हर माँ कुछ ना कुछ तैयारी जरूर करके रखती है। बल्कि मुझे याद है कि थोड़ी दूर भी चीज कोई मिलती होगी ना और माँ को पता चल जाए कि फलां जगह पे फलां कपड़ा आया हुआ, फलां चीज आई हुई, तो कहती बेटी के लिए लेके रख लेनी है। वो तैयारी में वहां से मंगवाएगी दूर से भी चीज, यानी किसी चीज की परवाह नहीं करती फिर माए, कि छोटी छोटी तिनके से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक। अब वो पता है कई लोग क्वेश्चन करते हैं ना बेटियों के लिए, अभी से हमने कुछ ना कुछ बना के रखा हुआ है जेवर, तो इसके ऊपर ज़कात है यानी, इसका मतलब है शुरू से गोल्ड भी लेके रखते हैं कि किसी तरह की कमी ना रह जाए, ताकि वहां जाके बेटी को रोना ना पड़े, ताकि वहां पे जाकर उसको कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। तो मैं समझती हूँ हमसे बहुत ज्यादा अकलमंद वो माँ है कि जब बेटी पैदा हुई उसको हालांकि ये यकीन नहीं है कि ये पल बढ़ के जवान भी होगी या नहीं, क्या पता वो बीच में ही फौत हो जाए, उसकी इतनी जिंदगी ना हो, और क्या पता कि वो जवान हो भी जाए तो कोई रिश्ता ही ना मिले, क्या पता उसकी शादी ही ना हो, लेकिन वो फिर भी हमसे कितनी ज्यादा अकलमंद है कि एक ऐसी चीज जिसका उसको यकीन नहीं है, जिसको जो यकीनी नहीं हो सकती, उसके लिए तैयारी करती है। और हम सब की मौत यकीनी है फिर भी हम उसकी तैयारी नहीं कर रहे, हम सबको जाना है। आप में से कौन कौन कहता है कि आपको रुखसत होना है, किस किस को यकीन है, हाथ खड़ा करेंगे? इस पूरे हॉल को यकीन है इसका मतलब। फिर कैसे हम नादान है कि जिस चीज का यकीन है उसके लिए कोई तैयारी नहीं है, और वो अनपढ़ माँ, जाहिल माँ, किसी गांव में रहने वाली माँ, उसको इतनी बात के ऊपर कि उसकी बेटी ने रुखसत होना है, वो कब से तैयारी कर रही है? हम पढ़े लिखे होके इस बात का जिसका हमें यकीन है, कोई चीज उतनी यकीनी नहीं है जितनी मौत यकीनी है, कोई भी चीज। किसी की शादी यकीनी नहीं है, किसी का पढ़ा लिखा पढ़ना, करियर बनाना, किसी की जिंदगी होना, किसी की शादी होना, इनमें से कोई चीज भी यकीनी नहीं है। सबसे ज्यादा जो चीज यकीनी है वो है मौत, मगर हमारे पास उसकी कोई तैयारी नहीं। क्या हैरत नहीं होती इस बात पे? देखें उस मां को कि जैसे रुखसती पर एक अनजाना सा खौफ होता है घर वालों को भी, जाने वाली को भी, बेटी को भी। हम सब की जब शादियां हुई हैं आपको पता है रुखसती से पहले कैसा एक खौफ सा होता है कि पता नहीं अगले घर जाएंगे तो क्या होगा, है ना? बिल्कुल इसी तरह जो जाने वाला होता है ना उसको नहीं पता कि अगले घर में क्या होगा। मेरा जो अगला घर है इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है ना, और इसीलिए मैं इस चीज़ को औरतों के लिए लेकर आई। स्पेशली मैं समझती हूँ कि औरत के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसी है कि जो अंडरस्टैंड कर सकती है, शायद मर्द इस बात को समझ ना पाए। एक अनजाना सा खौफ होता है पता नहीं क्या हो, जितनी भी तैयारी कर ली हो ये लगता है पता नहीं अल्लाह बेहतर जानता है अगले घर में क्या हो। हम जितनी भी तैयारी कर लें लेकिन एक खौफ ज़रूर रहेगा कि हमारे साथ अल्लाह बेहतर जानता है क्या सलूक होने वाला है। कोई भी फॉर श्योर नहीं कह सकता कि उसके साथ वहाँ पे भला ही होगा, मगर हाँ जो तैयारी करके गया वो उम्मीद अच्छी कर सकता है। आप देखते हैं माएँ बच्चियों को छोटे होते से कोई कोई हुनर सिखाना शुरू कर देती, और आपने भी ये बातें सुनी होंगी, ये सीख लो, ये कर लो, ये ना हो वहाँ पे जाके ताने सुनने पड़े, अगले घर में कोई तुम्हें कुछ कहेगा। और वो काम जो माँ वैसे कहती है नहीं कोई बात नहीं मैं इसे कोई काम नहीं कराना चाहती, घर में नौकर भी है, इसको इसलिए सिखा रही हूँ कि इस ये आज सीखेगी वहां जाके मुश्किल नहीं होगी। इसको म्यूट किया जाए, बैनर के लिए सर एक मिनट करते हैं इसको, स्काइप को तो एक चीज जो हम सब सीख सकते हैं इससे कि अगले घर जाना है और उसके लिए यहां से अमल करना शुरू करना है। माँ कहती है नौकर बेशक है घर में, इससे इसलिए काम कराती हूँ ताकि ये सीख जाए। बेशक आज आप कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। अमल इसलिए करना है ताकि अगले घर में परेशानी ना हो, कोई मुश्किल ना हो आपको। देखिए माँ सिलाई कढ़ाई भी सिखाती है, कुकिंग भी सिखाती है, हर हुनर सिखाती है, इस डर की वजह से कि इसको कोई बात ना सुननी पड़े। तो क्या आपको यकीन है कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको कोई बात नहीं सुननी पड़ेगी? उस घर में आपके लिए आराम ही आराम है। किसी को यकीन है? कोई भी नहीं कह सकता, कोई भी यकीनी तौर पे नहीं कह सकता उसके साथ क्या होने वाला। जैसे शादी के दिन दुल्हन को सजाया जाता है, इसी तरह हम खुद जब गुस्ल देते हैं ना बॉडीज को, तो इसी तरह सजाते हैं कि एक सबसे प्यारी लगे आज के दिन, सबसे हसीन लगे। एक उसकी उस दिन की भी तैयारी होती है, उस दिन की भी रुखसती होती है। और जैसे माँ बाप रुखसती पे रो धो के विदा करते हैं, तो कब्र में भी रो धो के डाल देते हैं। सारी जिंदगी माँ बाप कहते हैं हमारे पास तो ये पाबंदियां हैं ना, मियाँ के घर जाओगे फिर जो मर्जी करना। वाकई ये दुनिया की जिंदगी भी ऐसे ही है, आज पाबंदियां हैं, वहां चले जाएंगे ना जन्नत में फिर जो मर्जी करना। वाकई हर एक चीज को आप देखें तो इतनी ज्यादा आपको मुमासलत लगती है कि इंसान सोचता है वाकई मुझे एक दिन जाना होगा। तो आप अपने जहन में लेकर आए वो अपनी रुखसती का वक्त, तो वैसा ही वक्त होगा, वैसा ही एक दिन होगा। लेकिन बात क्या है कि हमारी तैयारी कितनी है। असल जो आज बात मैं करना चाहती हूँ आपके साथ कि हमने कब से जोड़ना शुरू करना है, आज तक हमने क्या तैयार किया है अपने अगले घर के लिए। अगर हम वहां पे जाके रोने धोने से बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? अगर हम वहां की तकलीफें सहना नहीं चाहते तो हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए? सास ताने ना दे, इस डर से तो माँ जोड़ जोड़ के रखती है। और मुनकिर नकीर ना सख्ती करे, इस डर से नहीं हम कुछ जोड़ेंगे। नंद ना कुछ सुनाए, इस डर से तो हम कहते हैं कि कोई कमी ना रह जाए। लेकिन वहां पे कबर ना भींचे, इस डर से कोई अमल नहीं करना। अब कहते हैं शौहर अच्छा सलूक करे इसलिए इसके लिए अलग से तोहफे लो, तो कबर अच्छा सलूक करे उसके लिए अलग से तैयारी नहीं करनी। कबर के नाम से कई लोग बहुत डरते हैं, वो वाकई डरना भी चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने कबर से ज्यादा सख्ती और घबराहट वाला कोई मंजर नहीं देखा जिसमें इंसान ने तन्हाई जाना है, कोई साथ नहीं होगा। किसी को किसी के साथ कबर में दफन होते हुए देखा? कोई भी नहीं होता, कितना ही प्यारा क्यों ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुझे ये डर ना होता कि तुम अपने मुर्दे दफनाने बंद कर दोगे तो मैं कब्र का अजाब तुम्हें सुनवा देता। यानी मुझे ये डर है कि तुम मुर्दे ही दफन करने बंद कर दोगे, वरना मैं ये तुम्हें दिखा देता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनाजे के मौके पे फरमाया था कि जब आप कब्र के पास बैठे हुए थे, आपके आंसुओं से कब्र की मिट्टी तर हो रही थी, आपने फरमाया अपने साथियों से कि इस जगह के लिए कोई तैयारी कर लो। ऐ मेरे सहाबा, इस जगह आने के लिए कोई तैयारी कर लेना, क्योंकि यहाँ पे इंसान ऐसे आजमाया जाएगा, ऐसे टेस्ट किया जाएगा जैसे फितना दज्जाल से। आप में से जिन्होंने फितना दज्जाल के बारे में अहादीस पढ़ी हुई है तो उनको मालूम होगा कि फितना दज्जाल कितना सख्त फितना है, कितना सख्त टेस्ट है, कितना सख्त टेस्ट है। और ऐसे टेस्ट में बहुत कम लोग पास होंगे। और वाकई ही कब्र जो है ना वो भी इस कदर सख्त टेस्ट है कि बहुत कम लोग वहां पे साबित कदम रहेंगे। इसके साथ सिर्फ अल्लाह की मदद हो, उनकी साबित कदमी रहेगी वहां। मौत क्या चीज है? असल में मौत खात्मे का नाम नहीं है, बस दुनिया की जिंदगी से खात्मे का नाम है। दुनिया की ये जिंदगी जो है ना सिर्फ ये खत्म होगी, ये ना कहें कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद एक और जिंदगी शुरू हो जाएगी। हाँ ये आप कह सकते हैं अमल का वक्त खत्म हो जाएगा, जो अमल की मोहलत मिली है वो खत्म हो जाएगी। ये समझ लें कि इम्तिहान खत्म होने की घंटी बजने का नाम मौत है, कि इम्तिहान का वक्त खत्म, टेस्ट का टाइम खत्म, ओवर। अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान पाक में, कुल्लु मन अलैहा फान, जो भी इस जमीन पे है उसको फना होना, फानी है, हर एक को फना है, कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं रहेगा सिवाय अल्लाह की जात के, उसको मौत नहीं है। तो ये बात कहना तो बहुत आसान है कि मौत ने आना है और आप सब हाथ उठा रहे हैं कि हमारी रुखसती होनी है, लेकिन यकीन इस चीज़ का कि मेरी धड़कनों ने बंद हो जाना और मैंने एक गड़े के अंदर दफन हो जाना, ये यकीन करना बे इंतहा मुश्किल है, क्योंकि वाकई जो चीज़ आई नहीं हो उसका यकीन करना भी मुश्किल होता है जब तक वो इंसान पे गुजरे ना। तो अपने वजूद को बेहिसो हरकत सोचना वो बहुत मुश्किल है। किसी के वजूद को तो आप देख सकते हैं, अपने वजूद को ऐसे सोचना ना बे इंतहा मुश्किल है। और इसी के लिए हमें आखरत के इल्म को सीखना ज़रूरी है, सीखेंगे तभी हमें यकीन आएगा। जितना आप सीखते जाएंगे आपको ये यकीन पुख्ता होता जाएगा कि मुझे जाना है और मुझे इसकी तैयारी करनी है। सबसे पहले तो ये चीज़ जहन में बिठा लें कि मौत के आने के लिए ना तो बुढ़ापा ज़रूरी है, ना बीमारी ज़रूरी है, ना कोई एक्सीडेंट होना ज़रूरी है, ये कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है कि कोई बूढ़ा ही होगा तो मरेगा, कोई बीमारी ही आएगी तो मरोगे, कोई एक्सीडेंट ही होगा तो मरोगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। किसी वक्त भी किसी के दिल की धड़कन बंद हो सकती है, यहाँ बैठे बैठे सांस बंद हो जाए अल्लाह का इज़्ज़न हो तो कोई नहीं रोक सकता। तो इस चीज़ को तो सोचना बंद कर देंगे, बूढ़े होके ही मरेंगे और अभी तो हमें कोई बीमारी नहीं है, अभी मैंने अपने टेस्ट कराए थे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो अभी थोड़ी मैंने जाना है। जब वो वक्त आ जाएगा तो असबाब भी खुद ब खुद बन जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकलमंद वो है जो अपनी जाने की तैयारी रखता है। तो जो लौट जाने को याद रखेगा ना वो ज़रूर इसकी तैयारी करेगा, और जो तैयारी नहीं करता वो चाहे लाखों दर सुन ले या लाखों दफ़ा इसका जिक्र कर ले कि मुझे जाना है, जो तैयारी नहीं करता उसको यकीन नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो जाके ज़रा कब्रिस्तानों में देखें, अब वहाँ पर ज़रा सोचा करें, कभी कभी जाके विज़िट किया करें और सोचा करें यहाँ पर कितनी आँखें ऐसी पड़ी हैं जो आज देख नहीं सकती, कितने ही हाथ ऐसे बेहिसो हरकत पड़े हुए कि जो आज कुछ नहीं कर सकते, नाकारा हो चुके हैं, कितने ही पैर ऐसे हैं यहाँ पे जो आज चल नहीं सकते, मौजूद हैं, कितने ही जिस्म हैं बिल्कुल मुर्दा है, कोई एक जिंदगी की रमक भी नहीं है। ये क्या हमें वाजे इस बात की दलील नहीं देते कि एक दिन हमारा भी यही ठिकाना है, हमारा भी यही घर है? लेकिन आज चूँकि हमारी फिक्रें हमारे गम कुछ और हो चुके हैं तो ये फिक्र रह नहीं गई। बूढ़ा हो या जवान, ये नहीं कहते कि जवानों को ही नहीं है, किसी बूढ़े को भी नहीं है, इस चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसे लगता है कि हमने खूब तैयारी कर रखी है और शायद हम जाएंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छा वेलकम होगा। आज इसको भी देख लेते हैं कि वहाँ पे हमारे लिए क्या रखा हुआ है आगे, जब दुनिया से जाना है, जितनी दुनिया की रौनकों में पड़े हुए ना, वही शायर ने कहा ना, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बन जाना, कुछ भी नहीं रह जाना साथ। तो आप जब कब्रिस्तान में जाएं ज़रूर डेट ऑफ बर्थ पढ़ा करें उनकी, कब पैदा हुए थे, और लिखी होती है उन पर वहाँ पे स्टोन्स पे किस डेट को किस तारीख को पैदा हुए, तो आप देखेंगे उनमें बच्चे भी होते हैं, जवान भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। इसका मतलब है कि मौत तो किसी की एज नहीं देखती। जब मलकुल मौत आएगा तो वो जो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया उससे एक सेकंड ना आगे ना पीछे होना। तो जैसे माँ के पेट से निकले थे इसी तरह जमीन के पेट में चले जाना एक दिन। तो आज हम यही देखेंगे इंशाल्लाह कि आगे की हमारी तैयारी जो करनी है किस चीज को बेस बना के करनी है और कौन से सवालात हैं जो आगे हमारे लिए तैयार पड़े हैं। और मेरे ख्याल में बहुत कम ही लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वो सवालात हमें बता दिए, तो हमारे लिए कितनी आसानी हो गई ना कि जो आज अगर मौत आ जाती है तो कौन से तीन सवाल हैं जिनका आपको जवाब देना है हर एक इंसान को। वो क़यामत आएगी तब तो आएगी, मौत के साथ ही कुछ तीन सवाल ऐसे हैं जिनका हर एक को जवाब देना। अब उन सवालों की तैयारी करना तो बाद की बात है, पहले तो हमें यही नहीं पता होता ना वो सवाल है क्या। सबसे पहले तो ये मालूम करें ना, तैयारी तो बाद की बात है। एक तो ये बात जहन में रखिएगा कि जब मैं कब्र में सवाल का नाम लूं तो आप ये ना समझें कि जो डूब गए उनसे तो कोई कब्र ही नहीं है, तो वो उनका क्या सवाल जवाब होगा, या जिसको किसी दरिंदे ने खा लिया अब उसका क्या सवाल जवाब होगा, या जो कब्र में गया ही नहीं किसी को कब्र ही नहीं नसीब होती, ये भी किसी नसीब वाले को ही मिलती है जो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, जिनके आज़ा कट फट के इधर उधर बिखर जाते हैं उनको कब्र भी नसीब नहीं होती कई दफ़ा। तो ऐसे लोगों के लिए मलबों में जो दब जाते हैं वही उनकी कब्र बन जाती है, तो क्या उनके लिए कब्र का सवाल जवाब नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं। जब भी कब्र का नाम आएगा तो मौत के बाद जो जहां भी है उससे सवाल जवाब होना है। तो अब जरूरी नहीं है कि कब्र किसी को मिलेगी तो ये सवाल जवाब होंगे, इसलिए मौत के बाद ये सवाल जवाब यकीनी है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये सवाल जवाब करेगा कौन, कौन आएगा करने के लिए। तो एक का नाम है, दो फरिश्ते, एक का नाम है मुनकर और एक का नाम है नकीर। ये वो फरिश्ते हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी, ताकि आज जहन में हो कि ये कैसे नजर आएंगे, किस शक्ल के होंगे। अब देखिए सवाल करने वाले कितने हैं? दो, और जवाब देने वाले एक ही है, उसमें नहीं साथ किसी को ले जा सकते। उनका हाल हुलिया कैसा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक हदीस से हमें पता चलता है कि उनके चेहरे काले स्याह होंगे। अब जरा इमेजिन करें कि कब्र की तन्हाई है, अंधेरा घुप है, उसके अंदर दो ऐसे फरिश्ते आ रहे हैं। फरिश्तों का सोचते ही हमारे जहन में कोई नूरानी सी मखलूक आती है, ये वाले ऐसे नहीं हैं, सब फरिश्ते एक जैसे नहीं हैं, फरिश्ते हैं लेकिन इनके चेहरे स्याह काले हैं और इनकी आंखें मोटी मोटी और बताया कि तांबे के देगचे के बराबर बड़ी बड़ी। कितनी बड़ी होंगी आंखें इसका मतलब, और उनके अंदर जैसे ऐसी रोशनी है कि चुंधिया देने वाली, जैसे समझ लें जैसे बिजली होती है ना इस तरह की, यानी आंखें जिससे इंसान चुंधिया जाए, जिस इंसान की आंखें ऐसी रोशन ऐसी चमकदार और नीले रंग की आंखें इनकी, और दांत गाय के सींग के बराबर लंबे हैं जिससे कि वो जमीन को जैसे कुरेदते हुए आएंगे, और इनकी आवाज ऐसी होगी जैसे बिजली की गरज। थंडर स्टॉर्म आता है, कई लोग कितना डरते हैं घर में रहते हुए भी, एक बिजली की गरज से इंसान सहम जाता है कि बिजली ना गिर जाए। और इनकी आवाज है और इंसान तन्हा है, इन्होंने सवाल जवाब करना है। और क्या उस वक्त आप सोचते होंगे हमारी समझ बूझ ऐसी होगी, बिल्कुल जैसे आप अभी है ना होशो हवास में अकल के साथ इस वक्त बैठे हुए ना, बिल्कुल ऐसी अकल होगी। ये नहीं है कि इंसान कुछ और ही बन जाएगा या वो कब्र में जाके तो हमें इतना समझ ही नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल यही समझ बूझ रहेगी, अकल ऐसी ही होगी आपकी, बिल्कुल सही, बिल्कुल अलर्ट। तो अब जहन में क्या आता है, इंतहाई डरावनी शक्लों वाले दो फरिश्ते, और ऊपर से ये कि आपने सिर्फ इनको देखना नहीं होगा बल्कि इन्होंने कुछ सवाल पूछने हैं जिनका जवाब भी देना है। हम तो ये हाल होता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर ही कोई सवाल पूछता ना तो टांगे कांपने लगती हैं और समझ नहीं आती कि जवाब क्या देना है। पेपर्स निकाल रहे हैं तो कोई पेपर किधर है और कोई किधर है, उसको समझ नहीं आती कि कौन सा पेपर निकालना था, ऐसे ही होता है ना, इंसान इतना कन्फ्यूज़ हो जाता है, हालांकि सब आपके पास मौजूद होते हैं और वो हमारे जैसे इंसान ही है, फिर भी हमारी ये हालत होती है। और कहाँ ये कि ये ऐसी मखलूक जिसको ना कभी पहले देखा ना कभी पहले सुना, इस मखलूक का सामना करना और इसके सवालों का जवाब देना हर एक के बस की बात नहीं होगी। अब इनके जो सवालों के सही जवाब नहीं दे सकेगा, पहले तो मैं उसका बताऊं कि उसके साथ क्या होने वाला, जिसने सवाल का सही जवाब ना दिया तो दो अंधे और बहरे फरिश्ते इस पर मुसलत कर दिए जाएंगे, जो लोहे के गुर्जों के साथ इसको मारेंगे। और वो जो लोहे के गुर्ज होंगे तो इतने वजनी होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये गुर्ज ऐसे होंगे कि अगर पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। तो इंसान को अगर ये गुर्ज पड़े, हथौड़े समझ ले, हैमर्स, कितने को बड़े होंगे जिससे वो उनको मारेंगे कि तुम्हें सवाल का जवाब नहीं सही आया। अब ऐसे में साबित कदमी किसको मिलेगी, ये देखते हैं हम। और एक इंसान को जो मारा जाए तो उसका हाल क्या रहेगा, लेकिन वो फिर से ठीक हो जाएगा, फिर उसको मारा जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर मारा जाएगा, फिर रेजा रेजा हो जाएगा। हमें क्यों नहीं नजर आता ये सब कुछ, हम तो कब्रों के पास से गुजरते हैं, ना हमें कोई आवाज आती है, ना कुछ। बुखार नजर आता है, सर में दर्द नजर आता है, नहीं। कोई कहे मेरे सर में दर्द है, हम कहते हैं दिखाओ कहाँ पे है, फिर मैं मान लूंगी, ऐसे तो नहीं कहते ना। वो हो रहा है वहां पे, हमें नजर नहीं आता, लेकिन इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि जिन और इंसानों के सिवा बाकी मखलूक सुनती है जो उनको अजाब हो रहा है अंदर। फिर वहां पे सांपों का अजाब अलग है, कब्र के भींचने का अजाब अलग है, और सांप ऐसे कि अगर जमीन के ऊपर वो फूंक मार दे तो उसके जहर से जमीन पे कभी घास ना उगे। और कब्र का जकड़ना ऐसा है कि पसलियां, इधर की पसलियां उधर और उधर की इधर, ऐसे अंदर दाखिल हो जाए, ऐसे कब्र क्रश करेगी। कितना तंग घर है वो, क्या किसी ससुराल के ताने, किसी ससुराल की तकलीफें ऐसी हो सकती हैं? फिर भी ससुराल की कितनी फिक्र है, उसके लिए कितनी तैयारी है, उसके जाने के लिए हम कब से तैयारियां शुरू करते हैं, और इस जगह की कोई फिक्र नहीं। क्या कोई तकलीफ इसके बराबर हो सकती है? और जहां पे कब तक रहना है कि जिंदगी के तीन मरहले हैं, एक ये जिंदगी जो अभी हम गुजार रहे हैं दुनिया में, एक ये बरजख की जिंदगी के मौत से लेके कयामत तक, जब तक उठेंगे नहीं उस वक्त तक ये कब्र ही है बरजख, ठीक है। और उसके बाद तीसरी जिंदगी कौन सी है, जो आखिरत की जिंदगी है, हशर के दिन से जो स्टार्ट होनी है, जब से हम अपनी कब्रों से निकलेंगे। अब इन तीन फेजेस में आप देखें, जरा गौर करें, आपकी ये जिंदगी कितनी लंबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 साल के दरमियान होंगी। कितना जी लोगे, 100 साल, ज्यादा से ज्यादा इतना ही। अच्छा, बरजख की जिंदगी कितनी है, आदम अलैहि सलाम से लेकर अभी तक जो लोग मरे हैं वो कहाँ है इस वक्त बरजख में, कितने हजारों साल से वो वहां पे पड़े हुए, और जब तक कयामत नहीं आएगी वो वही है ना कब्र में, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, उनको कोई अच्छाई मिल रही है, भलाई मिल रही है, जजा मिल रही है या सजा मिल रही है, वो उसी जिंदगी को गुजार रहे हैं। इसका मतलब है जब हमारी मौत आएगी उससे कयामत तक हमें उसी जगह पे रहना है। और तीसरा मरहला आखिरत का है, जो इटर्नल है, उसकी तो कोई काउंटिंग ही नहीं है, हम सब जानते हैं कि उसको काउंट कोई कर ही नहीं सकता कि वो अनलिमिटेड है, हमेशा रहना। इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा मरहला है, सबसे छोटी कौन सी जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी, जिसके लिए मेरी और आपकी मेहनत सबसे ज्यादा है, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड ये दुनिया की जिंदगी का, उससे लंबा बरजख का और सबसे लंबा आखरत का। लेकिन जो इस जिंदगी की सरहद को एक दफा क्रॉस कर गया, इस बॉर्डर को पार कर गया, दूसरी जिंदगी में चला गया, वापस नहीं आ सकता, वो वापस आके तैयारी नहीं कर सकता। तो हमारी वो दो जिंदगियां किस पे डिपेंड करती हैं, इस जिंदगी पे। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब कभी कोई कहता ना बड़े शौक से कि हाँ हमने तो मर ही जाना, और जैसे बड़ा इनको शौक है मरने का, तो मर तो एक दिन जाओगे, वापस कभी तैयारी के लिए नहीं आ सकते। शौक इसलिए रखो जीने का, इसलिए नहीं कि हमें बस जीने का शौक है और फन करना है, इसलिए कि मेरी दो जिंदगियां इस पर डिपेंड करती हैं। अगर ये मेरी जाया हो गई, अगली दो जिंदगियां जो कभी खत्म नहीं होने वाली वो जाया, उनमें सजा ही सजा, उसमें अजाब ही अजाब। इसलिए मुझे इस जिंदगी से क्यों मोहब्बत है, क्योंकि मैंने उसके लिए तैयारी करनी है और दिन थोड़े हैं। इसलिए मुझे इस जिंदगी से मोहब्बत है, इसलिए मुझे ये कीमती लग रही है, इसलिए मुझे एक एक लम्हा इसका प्यारा है, क्योंकि यहां पे नहीं मैंने तैयारी की तो वहां पे जाके मेरा कुछ नहीं बनने वाला। तो ये तो हाल है उनका जो सवाल नहीं सही बता सके जवाबात, लेकिन एक खुशखबरी है मोमिन के लिए कि मोमिन वो कौन सा मोमिन, जो तैयारी करके आया, जो बड़ा समझदार था, जिसने ज़िंदगी को ज़ाया नहीं होने दिया, जिसने ज़िंदगी को सिर्फ इसी दुनिया के लिए नहीं बिताया, उसने इस दुनिया में रहते हुए अगली ज़िंदगियों के लिए तैयारी की। उस मोमिन के लिए जब वो सवालों के सही जवाब दे देगा तो सबसे पहले खिड़की खुलेगी जहन्नुम की तरफ की, और उसको दिखाया जाएगा, देख अगर तैयारी ना करके आता ना तो ये तक तेरा ठिकाना, कितना वो शुक्र अदा करेगा। फिर जन्नत की तरफ की खिड़की खोल दी जाएगी, अच्छा ये है तेरा ठिकाना, और अब जब कयामत आएगी ना तो तूने इसमें जाना है। उसकी तो खुशी का कोई अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। फिर आराम से सोएगा और उसकी कब्र जो है 70 हाथ तक खुल जाएगी, इसकी कब्र भींच रही थी ना, इसकी हत्ते निकाह तक खुल जाएगी, कब्र खुली हो जाएगी और चौदहवीं के चांद की रोशनी की तरह रोशन कर दी जाएगी, लाइट भी होगी वहाँ पे। लाइट चाहते हैं ना, अंधेरों से डर लगता है ना, दिल नहीं चाहता अंधेरों में रहने का। कभी एकदम कमरे की लाइट बंद करें या ऐसे किसी स्टोर की जहाँ पे कोई खिड़की नहीं है वहाँ की लाइट एकदम ऑफ करते हैं, और बिल्कुल पिच डार्कनेस जब हो जाती है ना, एकदम कब्र का अंधेरा याद आ जाता है कि वहाँ पे भी तो कोई लाइट नहीं होगी। लेकिन इसके लिए सुभान अल्लाह रोशनी भी कर दी गई, इसके घर को खुला भी कर दिया गया। सब माएँ ये देख के बच्चियों के रिश्ते तय करती हैं कि बड़ा घर भी होना चाहिए और कुछ कमाता भी अच्छा हो, ऐसे कंगले के साथ थोड़ी भेजेंगे हम। जिसका घर छोटा है, जो कमाई नहीं करता, जो मेरी बेटी को अच्छा रख नहीं सकता, उस घर में नहीं भेजना चाहती। लेकिन हम खुद जाना चाहते हैं उस घर में जो तंग है, जो अंधेरा है। कोई माँ या कोई औरत शौरी तौर पे जिसका जहन ठीक ठाक हो, क्या ऐसी घर में ब्याही जाना चाहती है जहाँ पे वो देखती है कि तकलीफें ही तकलीफें, कोई भी नहीं चाहती। लेकिन हम अपने हाथों से अपने लिए वो घर तैयार कर रहे हैं जो अंधेरों का घर है, कीड़ों का घर है, अजाब का घर है, क्योंकि हम सवालों की कोई तैयारी नहीं कर रहे। अब मैं आपके सामने वो सवालात रखना चाहती हूँ कि वो कितने इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनको पल्ले बांध ले आज, कि इनमें नाकामी अगली सारी जिंदगी की नाकामी है, और इनमें कामयाबी बरज़ख की जिंदगी की कामयाबी है। सही सवालों का जवाब देने वाले, अब अपने अपने खुद नंबर आप लगाएंगे इस बार, जब मैं सवालों के रखूंगी ना आपके सामने, हर कोई अपने लिए खुद नंबर लगाए, ठीक है, क्योंकि हमने किसी को तो देखना नहीं, मुझे अपना घर खुद तैयार करना है और मुझे अपने सवालों के जवाब खुद देने हैं। कोई और अपनी कब्र में पास होता है या नहीं होता मुझे उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, पहले मैं अपनी फिक्र करूँ ना। इसलिए ये ना सोचें कि फलां वो तो नहीं तैयारी कर रही, देखा वो तो ऐसा करती है, मैं खुद कितने पानी में हूँ आज मुझे ये देखना। ये तीन सवाल हैं तो तीन, अब देखने में इंसान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह तीन ही है ना, वो पूरी ज़िंदगी का हिसाब किताब तो नहीं है, लेकिन असल में इन तीन सवालों में इंसान की पूरी ज़िंदगी को घेर लिया जाए गया। और आप देखते हैं कि इंसान अगर इन तीन सवालों के सही जवाब देता है तो दरअसल उसकी पूरी जिंदगी जो है वो दुरुस्त है, तभी ये तीन सवाल दुरुस्त हुए। उनमें पहला सवाल क्या है कि वो पूछेंगे आके, अब मखलूक ऐसी है कि मेरे ख्याल में अगर आपने कभी इम्तिहानात जो स्कूल कॉलेज वगैरह में होते हैं देते हैं, तो जब वो आपसे प्रैक्टिकल कुछ पूछते हैं ना क्वेश्चन, तो सवाल का जवाब आ भी रहा होता है लेकिन उस वक्त एकदम जहन से ही निकल जाता है ना, क्योंकि आप कहते हैं कि बस वो क्या टीचर इतनी सख्त थी और वो मुझे ऐसे देख रही थी और ये था, इस वजह से मुझे सवाल जवाब ही भूल गया। तो इस मखलूक के सामने भी वो अल्लाह ताला ही साबित कदमी देंगे कि कोई इंसान बोल सके। वो पूछेंगे सवाल, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? इसका जवाब आप सबको आता है, क्या कहेंगे? अल्लाह ताला, शाबाश, बड़ा आसान है ना जवाब। लेकिन दरअसल बात यह है, अगर इतना आसान होता ना تو پھر ہم کیوں ہی کافر بھی کہہ دے کہ اللہ اب یہاں پہ کامیاب ہونے کے لیے تو اللہ ہی کہنا ضروری ہے, تو ہر کوئی کہہ دے گا. پھر اس کے بارے میں کیوں کہا گیا کہ اتنا سخت امتحان ہے کہ جیسے فتنہ دجال کا امتحان ہے اس طرح سخت ہے قبر کا امتحان, یہ کیوں کہا گیا اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو؟ دراصل بات یہ ہے کہ من ربو کا جواب وہی دے سکے گا جس نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو رب مانا, اس کو رب مان کے وہ صرف مسلح پہ جب کھڑا ہوتا تھا تب اللہ اس کا رب نہیں ہوتا تھا, اس کی ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کا رب تھا. چاہے وہ کوئی خوشی کا موقع ہو تب بھی میرا رب اللہ ہے, چاہے غم کا موقع ہو تب بھی میرا رب اللہ ہے. کیا آپ کے خوشی غم کے موقع پہ میرا رب اللہ ہے یہ نکلتا ہے کہ جو اس نے کہا وہی ہوگا؟ کیا میرے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے جب مجھے کوئی مشکل آئے اس وقت میرا رب اللہ ہے ہوتا ہے یا پھر عامل بابا رب بن جاتا ہے؟ کیا جب آپ دن شروع کرتے ہیں تو میرا رب اللہ ہوتا ہے یا سٹار سے پوچھوں کہ آج میرا سٹار کیا ہے؟ کیا جس وقت آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میرا رب اللہ ہوتا ہے یا فلاں دربار پہ جا کے حاضری دوں تو میرا رب وہ ہے؟ تو جس نے مشکل کشا حاجت روا ہر ایک وقت میں اللہ کو اپنا رب مانا وہی جواب دے سکے گا. جس نے خوشی میں غم میں بیماری میں جوانی میں بڑھاپے میں ہر وقت میں اللہ ہی کو رب مانا, کیونکہ جس نے پھر جس کو رب بنایا ہوتا ہے نا مرتے وقت سے لے کر پھر انسان کے منہ سے وہی نکلنے لگتا ہے اسی کا نام. جیسے کسی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ایک آدمی تھا, ساری زندگی وہ ایک بزنس کرتا تھا, وہ کچھ چیز بیچتا تھا, تو جب وہ مرنے لگا تو لوگ اس کو کہہ رہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو, تو اس کے منہ سے نکلتا جا رہا تھا دو پیسے کا گٹھا دو پیسے کا گٹھا دو پیسے, کیونکہ ساری زندگی اس نے یہی آواز لگائی تھی. جس چیز کے گرد ساری زندگی گھومتی ہے نا مرتے وقت بھی وہی منہ سے نکلے گا, اور جب فرشتے آ کے سوال پوچھیں گے تب بھی وہی چیزیں منہ سے نکلیں گی, صحیح جواب نہیں دے سکے گا. تو زندگی بھر جس کی پوجا کی ہے اسی کو بولیں گے نا, جو پیسے کی پوجا کرتا رہا وہ ڈالر ڈالر ہی بولے گا, جو لوگوں کو پوجتا رہا کہ ہر چیز لوگوں سے پوچھ کے کرنی ہے, آج لوگوں میں کیا چیز ان ہے وہی کروں گی, یہ چیز لوگوں میں آؤٹ ہو گئی ہے اب اللہ کے نزدیک چاہے ان ہو مجھے نہیں پرواہ, لوگوں میں تو آؤٹ ہے نا, اس نے تو لوگوں کو رب بنایا, آپ کے رب لوگ تو نہیں ہیں, یا میری برادری یا ہمارے رسم و رواج ہمارے طریقے وہ آپ کے رب ہیں یا اللہ ہے رب؟ کتنی دفعہ زندگی میں اللہ کو پوچھ کے چلتے ہیں اور کتنی دفعہ لوگوں کو پوچھ کے؟ جس کی نظر میں ہمیشہ اللہ ہی رازق رہا اس نے اپنی کمپنی کو رازق نہیں سمجھا, اس نے اپنے بزنس کو رازق نہیں سمجھا, اس نے یہ نہیں سمجھا میرا سٹور مجھے رزق دیتا ہے, اس نے یہی سمجھا اللہ مجھے رزق دیتا ہے, اس نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ کمپنی مجھے رزق دیتی ہے, اس نے کہا اللہ ہے میرا رازق, اس کا خالق اللہ, اس کا رازق اللہ, اس کو شفا دینے والا اللہ, اس کی مشکلوں کو آسان کرنے والا اللہ, اس کی تکلیف میں تکلیف کو دور کرنے والا اللہ, اس کا مالک خالق رازق پالنے والا سب اللہ رہا نا, وہی کہے گا اللہ میرا رب ہے, باقیوں کے منہ سے نہیں نکلے گا. آج ہم کئی دفعہ جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز یہ کام نہیں کرنا, وہ کہتے ہیں پھر کھائیں گے کہاں سے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کھلانے والا تو یہ بزنس ہے یا یہ کمپنی ہے یا یہ سٹور ہے یا یہ شراب خانہ ہے یا یہ جوا خانہ ہے یا یہ جو بھی حرام کی وہ کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں پھر کھائیں گے کہاں سے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں رزق دے رہا ہے. تو رازق جب ہم کسی اور کو بنا لیں گے تو رب تو اللہ نہ رہا, پھر میں مجھے عزت دینے والا اللہ, تو اب میں عزت لینے کے لیے کسی اور کے در پہ نہ جاؤں کہ ان کے ساتھ رہوں گی تو عزت ملے گی, عزت دینے والا رب ہے تبھی اس کے منہ سے نکلے گا اللہ. پھر مجھے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ نہ چاہے, وہی انسان کہہ سکے گا اللہ, اور میرا کوئی کچھ نہیں سنوار سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. کوئی بھی خیر شر مجھے پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. کیا یہ عقیدے ہیں ہمارے؟ کوئی دینا چاہے اور اللہ نہیں دینا چاہتا تو مجھے مل نہیں سکتی یہ چیز. کوئی روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا جب تک اللہ مجھے نہ دینا چاہے. اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا, وہ روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا. اور یہ سب چیزیں میرے اپنے ہاتھ میں نہیں, یہ میرے رب کے ہاتھ میں. کیونکہ کبھی انسان خود بھی اپنا خدا بن جاتا ہے, کہتا ہے میں کرتی ہوں, میں کماتی ہوں, میں لاتی ہوں, میں نے یہ کیا, مجھے اپنے اوپر بھروسہ ہے. جس نے ساری زندگی بھروسہ رب پہ کیا, جو یہ جانتا تھا کہ نہ انسانوں کے ہاتھ میں کچھ ہے, نہ زندوں کے ہاتھ میں کچھ ہے, نہ مردوں کے ہاتھ میں کچھ ہے. یہ دھیان سے سنیں, نہ مردوں کے ہاتھ میں کچھ ہے, نہ کسی دربار کے پاس کچھ ہے, نہ کسی حکومت کے پاس کچھ ہے, نہ کسی حکومت کے کسی اعلیٰ عہدے دار کے پاس کچھ ہے. میرا سب نفع نقصان ہر چیز میرے رب کے پاس ہے. تو مجھے بتائیں پھر وہ دوستی کس کے ساتھ کرنا چاہے گا؟ جس کو یہ یقین آ جائے کہ میرا تو سارا کچھ ہی میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے ہماری نوکری فلاں کے ہاتھ میں ہے, کیسے اس کے سامنے آگے پیچھے ہوتے ہیں, کیسے بچتے چلے جاتے ہیں, کیسے ان کو تحفے دیتے ہیں, کیسے ان کی دعوتیں کرتے ہیں, نوکری اس کے ہاتھ میں ہے. جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, کیا اس کے ساتھ نہیں پھر انسان دوستی کرنا چاہے گا؟ پھر ہماری تو سب سے بڑھ کے یہ خواہش ہوگی کہ ہماری دوستی ہمارے رب کے ساتھ ہو جائے. پھر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جائیں. لیکن ہم اس کو چھوڑ کے کب کسی اور کے پاس جاتے ہیں؟ جب یقین نہیں ہے کہ میرا سب کچھ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ یقین ہوتا تو اس کو چھوڑ کے کہیں نہ بھاگتے. پھر آپ کو یہ بھی یقین ہوتا کہ رازق اللہ ہے, میرے نوکری کرنے سے نہیں مجھے رزق مل رہا. آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے, نوکری میں ہی سارا وقت چلا جاتا ہے, اللہ کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے. تو رازق کون ہے, نوکری ہے یا اللہ ہے؟ اس اللہ کے لیے وقت نکالو گے کیا تمہیں بھوکا چھوڑ دے گا؟ تو آپ دیکھیں پھر اگر آپ کو یہ یقین آیا ہے نا اس دنیا میں, اگر اس دنیا میں, قبر میں جا کے تو بات کی بات ہے آپ نے کیا بولنا ہے. آج اگر واقعی آپ کے دل میں یقین ہے تو آپ کے لیے نمبر ون پرائیورٹی کون ہوگا؟ اللہ ہی بن جائے گا. سب کچھ جس کے ہاتھ میں ہے آپ کا, آپ کی بچیوں کی شادیاں, آپ کی زندگی, موت, گھر کی خوشیاں, رزق, کوئی کسی کا پیدا ہونا, کسی کی کوئی پریشانی, بیماری, ہر چیز جس کے ہاتھ میں ہے, آپ کیا سوچتے ہیں اس کو چھوڑ کے آپ کہیں اور بھاگیں گے؟ کبھی بھی نہیں. انسان جہاں اپنا فائدہ دیکھتا ہے نا, چاہے وہاں پہ دو آنے کا بھی فائدہ ہو, ابھی سیل لگے گی نا, دو آنے کا بھی فائدہ ہو, بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. جس کے پاس ہر چیز کا فائدہ ہے آپ کا, کیسے ہو سکتا ہے آپ اس کو چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہو؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہوتا تب ہے جب آپ کو یقین نہیں ہے. دیکھیں ایمان میں کمی ہے, کیسے بولیں گے پھر وہاں پہ کہ میرا رب اللہ ہے؟ آپ نے تو زندگی میں نہیں کبھی سمجھا اس کو رب, بنایا ہی نہیں کبھی. یہ منہ کی باتیں ہیں, منہ کی باتیں وہاں پہ کاؤنٹ نہیں ہوں گی. وہاں پہ بول وہ ہی سکے گا جس نے ماننا ہوگا. پھر کیا اس کی زندگی جس نے اللہ کو اپنا رب بنایا, خود اپنے آپ سے سوال کریں کیا ایسی ہوگی جیسی میں آج زندگی گزار رہی ہوں, لاپرواہی کی زندگی, جیسے آج میں مطمئن بیٹھی ہوں, کیا اس کی زندگی ایسی ہی ہوگی جیسے آج میری زندگی ہے؟ جس کی ترقی اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس کی قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس کی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, کیوں کر وہ اس رب کو چھوڑ کے کہیں اور جائے گا؟ تو ہم نے نہیں بنایا ہوا اللہ کو اپنا رب. دراصل یہ جھوٹ ہے. اس میں اپنے آپ کو نمبر دے لیں آپ کے, مے بی اگر ہم 100 نمبر میں سے کچھ دینا چاہیں, مے بی 50 آ جائیں, تو کچھ کچھ کرتے ہیں, کچھ کچھ نہیں بھی ہے. 100% کس کے نمبر ہیں؟ دوسرا سوال ہے من نبی کا, تمہارا نبی کون ہے؟ کیا کون ہے آپ کا نبی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہمارا جواب ہے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, رائٹ؟ رسول کا مطلب سمجھتے ہیں؟ رسول وہ, یہ گواہی دینی تو آسان ہے, رسول وہ جو اللہ کا پیغام لانے والا ہے نا, ایسے ہی ہے نا, یہی ہوتا ہے نا رسول. اپنی خواہش سے تو اس نے کوئی بات نہیں کہی نا, वो रसूल का मतलब ही क्या है, मैसेंजर, मैसेज लाने वाला अल्लाह की तरफ से। जो अपना रब अल्लाह को मानता है, क्या वो उसका पैगाम नहीं सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा। अब आप देखें, अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मुझे फॉलो करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं ना, अगर आप कहते हो कि मेरा रब अल्लाह है, आप चाहते हैं कि मुझे अल्लाह की मोहब्बत मिले, तो क्या करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, और अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। इसका मतलब है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी माना तो वो उनको फॉलो करेगा, खाली मुंह से नहीं कहेगा। अच्छा ये बताएं, आप कहती हैं एक आदमी को आपने कहा है कि आप मेरे शौहर हैं, कहा है ना, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोमेटिकली अब आपने ये मान लिया, ये सारी बातें आपने मान ली हैं कि अब मैं आपके साथ रहूंगी, मेरी जो औलाद पैदा होगी वो आपसे होगी, मेरा ताल्लुक किसी और गैर मत के साथ नहीं होगा सिवाय आप, ये सब आपने कह लिया ना, सिर्फ इतनी सी बात कह के, ये मान के, ये साइन कर के कि आज से ये मेरा शौहर है, मैं इसको अपना शौहर मानती हूँ, सब चीज़ों का आपने इकरार कर लिया कि मेरी इज्जत, मेरा माल, मेरा सब जो है ना, अब मेरे और इसके एक है, अब इसकी इज्जत मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत इसकी इज्जत है, ये सब चीज़ें आपने मान ली ना, हालांकि कहा तो आपने कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपने यही किया ना कि वहाँ पे साइन किया है कि ये मेरा शौहर है, लेकिन सारी बातें आपने खुद ब खुद कैसे मान ली? आप ये तो नहीं कह सकती मैंने आपको शौहर माना लेकिन मैंने कभी ये कहा कि मैं आपके घर में आके रहूँगी, आपके साथ रहूँगी, ऐसा तो कोई नहीं कहता, क्योंकि जब आपने ये मान लिया ये मेरा शौहर है तो इसका मतलब ये सब बातें आपने मान ली। इसी तरह जब आप कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो आपने इकरार कर लिया कि अब के बाद मैं सिर्फ अल्लाह ही की मानूंगी, खुद ब खुद आपने इकरार कर लिया। आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहा ना, हमने कभी ये कहा कि हम अल्लाह की मानेंगे और सुन्नत की पैरवी करेंगे? नहीं, जब आपने ये कलमा पढ़ लिया तो ये सब कुछ आपने मान लिया खुद ब खुद, आपने फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने का इकरार कर चुके हैं आप। लोग कहते हैं ना कुरान की तरफ आएंगे तो अमल करना पड़ेगा, इसलिए इस तरफ आओ ही ना। मैं कहती हूँ कि कुरान पढ़ लिया, कहते कुरान सीख लिया पढ़ लिया तो अमल करना पड़ेगा, मैं ये कहती हूँ कि जब आपने कलमा पढ़ लिया ना तो आपने ऑलरेडी ये इकरार कर लिया कि मैं अमल करूँगी, अब तो ये सवाल ही नहीं है आपसे कि अमल करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो आपसे कोई क्वेश्चन करेगा ही नहीं। आपने जब कलमा पढ़ लिया तो ऑलरेडी आपने इकरार कर चुके हैं, मान चुकी है ये बात कि मैं अल्लाह ही की मानूंगी, मैं उसके रसूल के तरीके पर ही चलूंगी, आप तो ऑलरेडी मान चुके हैं, अब तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप ये कहें कि अमल करना पड़ेगा, आपने तो अमल करने का इकरार कर लिया, या तो ये कलमा ना पढ़ते, क्योंकि ये कलमा जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है, अगर ये इतनी मामूली चीज़ होती तो मुशरिकीन ने मक्का को क्या ज़रूरत थी कि वो इतनी दुश्मनियाँ लेते, जंगे करते, मुखालफतें करते, वो भी एक दफ़ा कलमा पढ़ के इसी तरह मनमानी ज़िंदगियाँ गुजारते, उनको क्या ज़रूरत थी इतनी दुश्मनियाँ लेने की, इतना खून खराबा कराने की। इसका मतलब वो असल में जानते थे ना कि ये कलमा मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा इकरार है जो हम पैदाइशी तौर पर कर चुके हैं, अब क्या करना है, शौरी तौर पे इस इकरार को करना है, असल में कॉन्शियसली नहीं किया, सिर्फ बाय बर्थ चूंकि मुसलमान घराने में पैदा हुए इसलिए कलमा पढ़ लिया, शौरी कलमा पढ़ने की ज़रूरत है, बाय बर्थ नहीं, शौरी तौर पे पढ़ें ताकि पता चले कि वाकई ये मुसलमान है, आज हम शौरी मुसलमान नहीं हैं, बस बॉर्न मुस्लिम हैं। तो जब आपने कलमा पढ़ लिया अब क्या होगा, अब आप ये नहीं कह सकते ये तरीके जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं ये कोई बैकवर्ड तरीके हैं, ये आउटडेटेड तरीके हैं, ये पुराने तरीके हैं, ये दकियानूसी बातें हैं, ये नहीं कह सकते, अब तो आप मान चुके हैं कि मैं इन्हीं तरीकों को फॉलो करूंगी, ये रास्ता है जो मेरा रास्ता है क्योंकि मैं मुसलमान हूं। तो जो फिर वाकई ये कहना चाहता है कि मेरे नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, फिर उनके अखलाक देख लें कि कैसे थे और उनके मामलात फिर देख लें कि कैसे थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठना बैठना देखें कैसा था, फिर ये देखें उनकी इबादत कैसी थी, उनकी जिंदगी कैसी थी, उनको पसंद क्या था, क्या चीज नहीं पसंद थी। लेकिन ये बातें हम क्या फॉलो करेंगे जब हमें पता ही नहीं, हम तो नहीं जानते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या थी, किस चीज को फॉलो करेंगे आप। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना है, ताकि फिर उसके बाद हम किसी का हाल हुलिया ये देख कर ये ना कहें ये कार्टून लग रहा है, फिर हम ये ना कहें कि दाढ़ी ये क्या, ये तो पुराने लोग हैं, फिर हम तरह तरह की बातें ना बनाएं कि किसी को हाथ से खाते हुए देख लें तो कहीं पेंडू हैं। हमें तो उनके तरीके ऐसे लगते हैं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि हमारे नबी का तरीका क्या है और वो क्या तालीमात देकर गए। ये अगर पूछा जाए ब्लैंक है, कुछ पता ही नहीं क्या तालीमात देकर गए, कुछ नहीं जानते। उनकी शादियां कैसे हुई हमें नहीं पता, हमें क्या पता, हमें तो आज के तरीके बहुत पता है, लेकिन हमें वो नहीं पता कि सुन्नत के मुताबिक शादी कैसे होती थी। फिर उनके यहाँ मरने जीने पे क्या रस्में होती थी, क्या तरीके होते थे, हम नहीं जानते। उन्होंने इबादत के क्या तरीके अपनाए, हम नहीं जानते, हमें पता ही नहीं। उन्होंने नमाज कैसी पढ़ी, वो नहीं हमें पता, जो बचपन से मौलवी साहब ने हमें सिखा दी बस हमें तो वही पता है, हमें ये नहीं पता उन्होंने कैसी पढ़ी थी। तो जो हमें शुरू से सिखा दिया जाता है हम उसी को कर रहे हैं, जो हमारी बरादरी के रस्म और रिवाज है हम उसी पे चल रहे हैं। हम कहते हैं हम तो शादियां वैसे करेंगे जैसे कि आज कल का तरीका है, हमें परवाह नहीं है कि उनके तरीके क्या थे। हम तो मर्ग पे वही करेंगे जो आज चलता है, सभी जो करते हैं, हम वो नहीं कर सकते जो सुन्नत का तरीका है। तो आपने तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं माना, उनकी जिंदगी का क्या है आपकी जिंदगी में सिवाय इस इकरार के कि वो हमारे नबी हैं। आप बताएं कि आपने मानी क्या उनकी, कौन सी बात आपने उनकी अपनाई है। अब पता ही नहीं है तो मानेंगे फिर क्या ना। तो जिसने इस सवाल का जवाब देना है तो उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो करना होगा, उसको ये मान लेना होगा कि यही तरीका बेस्ट तरीका है और इनकी बात सबसे ऊपर है। इनकी बात के आगे कोई आज का फैशन हो, कोई आज का तरीका हो, वो पीछे है। इनकी बात के से आगे किसी की बात नहीं हो सकती। जब उनकी हदीस आप तक पहुंच जाए तो ये कह के ऊँह ना कर दें कि हदीस ही है ना, कुरान में कहाँ लिखा है, हम तो हदीसों को मानते ही नहीं हैं। फिर ये ना कह दे, फिर ये कहते हदीस जहाँ पे आ गई वो तरीका बेहतरीन तरीका, मैं तो उसी को मानूंगी, तब पता चलेगा कि आपने उनको फॉलो किया। लेकिन हम तो जिंदगी के शायद ही किसी मामले में इस चीज को पसंद करते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हम अपनाएं। आप देख लें अपनी जिंदगियों में, आज इस चीज का जायजा लें कि कौन कौन से वो तरीके हैं, कौन कौन सी वो जगह है जहां पे मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को आगे रखती हूँ। खुद अब इस चीज का जवाब हम सब खुद अपने आप को दे सकते हैं। उनका तरीका कभी हमें पसंद नहीं होता, आज का फैशन पसंद होता है। तो यहां तक आपके दो सवाल मुकम्मल हो गए, अब इसमें आप अपने आप को नंबर दें, किस हद तक पास हैं। जिसने अपने वालदैन को, अपने शौहर, अपने बच्चों के शौक को या अपने खानदान की रस्मों को देखना है, या उन्होंने कहना है कि हस्बैंड को ये नहीं पसंद और मेरे घर वालों को वो नहीं पसंद और हमारा तो कल्चर ये है और आज का फैशन तो वो है, तो जिसने तो इन चीज़ों को अपनाना है, जाहिर सी बात है उसकी ज़िंदगी में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं झलकेगा, वो तो वही उन्हीं के तरीके झलकेंगे। हमने तो किसी की माननी भी है तो तभी माननी है कि हाँ अगर तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बात करते हो तो हम मान लेंगे, वरना नहीं, वरना ये अपना तरीका अपने पास रखो। लेकिन आज देखें हम रबीउल अव्वल पे नाते तो पढ़ते हैं, बड़ी मोहब्बत का दम भरते हैं, लेकिन क्या इससे पास हो जाएंगे आप जब आपकी ज़िंदगी में ये तरीके ही शामिल नहीं है। किस चीज़ का नबी माना आपने उनको, सिर्फ मुंह से बोल के, सिर्फ मुंह से कह के, मुंह से कह के तो कुछ नहीं होता, मुंह से कह के तो पास नहीं हो जाएंगे। मैं मुंह से बोल दूं मैं डॉक्टर हूं तो क्या मैं उसे डॉक्टर बन जाऊंगी। मुंह से कहने से फर्क नहीं पड़ता जब तक के अमली जिंदगी में ना आ जाए। और जैसे मैंने आपको मुशरिकी ने मक्का की मिसाल दी, मुंह से कहना तो इतना आसान है, वो तो तोते को भी रटा दोगे वो भी रट लेगा, आप उससे पूछे, अब जिनके घर में ऐसे टॉकिंग बर्ड्स होते हैं उनको कोई चीज सिखा देते हैं वो वैसे ही तब तक बोलते रहते हैं। क्या उस तोते की तरह जिसे एक सवाल पूछा तो उसने आगे से फट से जवाब दे दिया और उसके बाद कुछ भी नहीं। मुझे बताएं कि जो हमारे घरों में आके क्या ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, या हमारे ओकेजन्स पे पता चलता है कि हमें सुन्नत कितनी प्यारी है। हमने तो हर चीज़ को बदल दिया दूसरों के तरीकों से, अकीके को बदल दिया बेबी शावर से और बर्थडे से, हाँ, और इसी तरह दूसरी भी सारी रस्मों को आप देखें जो इस्लामिक तरीके थे उनको छोड़ के हमने हर एक दूसरों का तरीका अपना लिया। तीसरा सवाल फिर उनका क्या होगा, मां दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है, क्या है आपका दीन? इस्लाम। बिल्कुल सही। अब अरबिक में दीन का मतलब सिर्फ ये नहीं है व्हाट इज योर रिलीजन, अरबिक में दीन का मतलब क्या है, जो आपका तरीका है जिंदगी है, आपका वे ऑफ लाइफ, आपका वे ऑफ लाइफ क्या है। जिसका वे ऑफ लाइफ इस्लामिक होगा, जिससे कि हमें बड़ी चिढ़ चढ़ती है कि इस्लामिक वे ऑफ लाइफ हमें पसंद नहीं है, इस्लामी तरीके, इस्लामी तरीका है जिंदगी वो हमें ऑर्थोडॉक्स लगता है। तो जिसका वे ऑफ लाइफ इस्लामिक होगा, जिसको कि हम बहुत यानी बैकवर्ड और बहुत ही पुराना और बहुत ही ऐसा समझते बेकार, जिसका वो वे ऑफ लाइफ होगा ना, वो कह सकेगा इस्लाम, हर एक बोल ही नहीं सकेगा वहां पर। जिसका वे ऑफ लाइफ अंग्रेजों वाला है या हिंदुओं वाला है वो क्या बोलेगा? आप खुद बताएं, यहाँ पे इस्लामिक तरीका चलेगा या पाकिस्तानी तरीका? इस्लामिक तरीका, इस्लामी तरीके, इस्लामी कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर नहीं, अरब कल्चर नहीं, अंग्रेजों का कल्चर नहीं, इस्लामी कल्चर, इस्लामी लिबास, इस्लामी असूल, इस्लामी आदात, इस्लामी रंग ढंग, देखने से पता चल जाए मुसलमान है, बोलने से पता चले मुसलमान है, किरदार से पता चले मुसलमान है, मामलात से पता चले मुसलमान है, क्योंकि जो इस्लाम पे, इस्लाम लाने वाला होता है उसका नाम क्या होता है? मुसलमान। क्या मेरे उठने बैठने चलने फिरने बात करने बात शुरू करने बात खत्म करने मेरे रंग ढंग मेरे दूसरों से मामलात मेरे बिजनेस, क्या इन डीलिंग्स में पता चलता है कि मैं मुसलमान हूं? जिसने शादी की तो हिंदुओं की तरह कर ली, और मर्ग की रस्में की तो वो भी उनके तरीकों के मुताबिक कर ली, जिंदगी गुजारी तो वेस्ट के तरीके के मुताबिक, लिबास पहना तो वेस्ट के मुताबिक, त्यौहार मनाए तो ईसाइयों के त्यौहार मना लिए, वो कैसे कहेगा मेरा वे ऑफ लाइफ इस्लामिक है? कैसे कहेगा? जो हलाल हराम को देखे बगैर खा ले वो कैसे कहेगा कि मैं मुसलमान हूं? मेरा वे ऑफ लाइफ, मेरा दीन इस्लाम है, जो उन्हीं के कल्चर उन्हीं के लिबास पसंद करता है। यानी अब आप देख लें, अगर अपनी डेली लाइफ में ही देख लें, जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सलाम की जगह किसने ले ली? हेलो हाय ने। और जब जाने लगते हैं तो सलाम की जगह किसने ले ली? टाटा बाय बाय, यही है ना। जज़ाकअल्लाहु खैरन की जगह किसने ले ली? थैंक यू ने। और इंशाल्लाह की जगह या यस आई विल, मैं करूंगी, इंशाल्लाह का कहीं नामो निशान नहीं है। और फिर आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह की जगह ब्लेस यू। हर एक चीज में हमने तरीका बदल दिया, अपनी जुबान ही देख ले, अपना लिबास देख ले, लिबास से तो पता ही नहीं चलता ये मुसलमान है। अगर शलवार कमीज भी पहने तो वैसे ही शलवार कमीज हिंदू पहन लेते, वैसे ही वो भी सिकनिया भी दुपट्टा सर पे ले लेती, पता नहीं चलता ये मुसलमान औरत है या ये हिंदू है सिख है। आपको मालूम है ना, कुछ साल पहले जब एक ट्रेन का हादसा हुआ था इंडिया में, तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब इनमें मुसलमान कौन है और हिंदू कौन है, तो वो उनके लिबास से देख के पहचान रहे थे कि ये मुसलमान है। उनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया गया, और जो दूसरे लिबास वाली थी तो उनको हिंदुओं के कब्रिस्तान में, उनके वहां पे उनके तरीके के मुताबिक जलाया गया, क्योंकि पता नहीं चल रहा था, सब मिक्स हो गया था। तो आज हमारे घर देख लें, घर नहीं लगते बुत कदे ज्यादा लगते, हर तरफ तस्वीरें बुत तस्वीरें, दीवारों पर देखो तस्वीरें, हम अपनी पूजा कर रहे हैं, ये अपनी पूजा है, ये हम अपने आप को इतनी बड़ी चीज समझते हैं कि हर जगह हमारी ये तस्वीर नजर आनी चाहिए। क्या चीज है हम कि हर जगह मैं अपनी तस्वीर को बड़ा करके लगाऊं, लोग आए और देखें किसको पूज रहे हैं, अल्लाह को या अपने आप को।